उसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान में एक ऐसी स्थिति होती है, अनुभव होता है, अब प्रभु आकाश में ध्यानावस्था में आ गए हैं। आहा, कैसा प्रभु का स्वरूप है, वह तो बड़ा ही दिव्य है, आकर्षक है, मनमोहक है, उसका वर्णन कैसे करें। वर्णन में वाणी इतनी सुंदर नहीं बन पाती जितना भगवान का स्वरूप सुंदर है। अंतःकरण से दिख रहा है, प्रभु निराकार स्वरूप से साकार रूप से प्रकट हो गए। प्रभु का स्वरूप श्याम वर्ण का है, आनंदमय है, जिधर से भी देखो आनंद की अनुभूति होती है। प्रभु की आयु मानो 12 बरस की है, ऐसा प्रभु का स्वरूप है। 4 फुट की लंबाई है और 1.5 फुट की चौड़ाई है, ऐसा कौन कह सकता है, अनुमान लगा लो। सो जाने जो ही देव जनाई, लंबाई और 1.5 फुट की चौड़ाई, 12 बरस की उम्र, सारा शरीर चम 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 चमक रहा है। भगवान योग माया से ढके हुए सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं हो रहे हैं। प्रभु का दिव्य स्वरूप भक्तों को दिखाई दिया करता है, वही स्वरूप प्रभु धारण किए हुए हैं। सारी दुनिया का सौंदर्य उनके एक अंश के बराबर भी नहीं है। प्रभु के चरण बड़े सुंदर, चमकीले, चिकने, छूने से सारे शरीर में रोमांच होता है। चरणों की अंगुलियां बड़ी सुंदर है, क्या अलौकिकता चरणों में है। हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं, आओ प्रभु थोड़ा नीचे की तरफ आओ। अब प्रभु मुस्कुराते हुए नीचे आ गए, थोड़े नजदीक आ गए। कैसी अद्भुत दिव्यता है, मानो चंद्रमा का टुकड़ा तोड़कर लगा दिया गया हो, ऐसे नाखून है। ऐसे ही प्रभु के जानू हैं, नूपुर बज रहे हैं, चिरमी भी गूंथी हुई है, बारह बरस के प्रभु खड़े हो जाते हैं। प्रभु बाकेपन से खड़े हुए हैं, कमर की लचक बहुत सुहावनी है, कमर पतली है, नाभि बड़ी सुंदर है, तीनों रेखाएं हैं, दोनों भुजाएं गोड़ों से भी लंबी हैं, बड़ी सुंदर है। होठ दोनों ही बड़े सुंदर है, फिर इन होठों पर बंसुरी है, बंसुरी मानो भगवान के होठों से रस का पान कर रही है। भगवान ने दाहिने हाथ से स्वर चलाए हैं बंसरी पर, दाहिने हाथ से स्वर चलाए हैं और बाएं हाथ से बंसरी को पकड़े हुए हैं। गले में पुष्पों की माला है, मोतियों की माला है, रत्नों की माला है और इन सब के बीच में ठीक वक्षस्थल के खड्डे में कौस्तुभ मणि चमकती है। कड़ा अंगूठी बाजूबंद पहने हुए हैं, कंठों में कंठला पहने हुए हैं, दुपट्टा ओढ़े हुए हैं। बड़ी सुंदर मूर्ति है, शरीर न मोटा है न पतला है, दांत मानो हीरों की पंक्ति ही हो, कपोल कितने सुंदर हैं, गुलाबी जिनका रंग है कपोलों का भी चमक रहे हैं। उसमें भी बड़ी सुंदर नासिका है, नाक में मुक्ता फल है, कानों में सुंदर कुंडल है, कुंडल की झलक मंद बिजली की तरह गालों पर पड़ रही है, नेत्रों की शोभा कहीं नहीं जा सकती। भगवान के नेत्र ही ऐसे हैं जो सबको मोहित कर लेते हैं। भगवान के नेत्रों से प्रेम का प्रवाह बह रहा है, कृपा बह रही है, करुणा बह रही है। जब प्रेम से देखते हैं तो मानो हम लोगों को घायल कर देते हैं, सब मानो आनंद के रूप में डूबे हुए हैं, आनंद की बाढ़ आ रही है। नेत्रों में अद्भुत शांति और दया है, नेत्रों में समता है, इन्हीं नेत्रों में जब दया की तरफ ख्याल करते हैं तो एक दया का समुद्र मानो उमड़ रहा हो। जब प्रेम की तरफ देखते हैं तो मानो भगवान प्रेम की बरछी मार रहे हैं। ये बरछी प्रेम की है, प्रेम की है। इस बरछी से जितने कटोगे उतना आनंद मिलेगा, दुख नहीं होता। ये तो कहने के लिए बरछी है। यह कटाक्ष प्रेम का दीपन करने वाला है और बढ़ाने वाला है। नेत्रों की बनावट है, उसमें भी अलौकिकता है और फिर भी तिरछे नजर से देखते हैं तो कहना ही बनता है। एक बार उस तिरछी नजर वाले से अपनी नजर मिला लें तो फिर वह किसी की तरफ नहीं देख सकता, सारा शरीर दे दीप्यमान है। ऐसे ध्यान में डूबे रहना चाहिए। क्या सुनावे अभी इसके बाद, परमात्मा का ध्यान सबसे बढ़कर है। जेठ सुदी पंचमी सम्मत 1995 कर्णवास 3/6/38। परमात्मा का ध्यान सबसे बढ़कर है। वैराग्य से ध्यान निरंतर रहता है। आजकल लोगों के हृदय में वैराग्य नहीं होने से ध्यान लगता नहीं। वैराग्य की तरफ तो ध्यान देते नहीं और सीधे ही प्रश्न करने लगते हैं कि हमारा मन ध्यान में लगता नहीं। ये मन का कसूर नहीं है, खुद का कसूर है। वैराग्य हो फिर देखो ध्यान लगता है कि नहीं। वैराग्य के समान संसार में कुछ नहीं है। परमात्मा में प्रेम करो और संसार से वैराग्य करो, यह सबसे बढ़कर बात है। संसार से प्रेम मत करो। आजकल उल्टा हो रहा है, परमात्मा से वैराग्य हो रहा है, संसार से प्रेम हो रहा है। तो वो कांटे निकाल रहे हैं सेठ जी। वैराग्य से भगवान में ध्यान प्रेम अपने आप ही हो जाता है। और वैराग्य कैसे हो, सत्संग से और भजन से होता है। विवेक से भी विचार करें तो विवेक द्वारा भी होता है। वैराग्यवान की दृष्टि वाणी में वैराग्य बरसाता है। वह तो वैराग्य की मूर्ति है। यदि वैराग्यवान न मिला और सत्संग करते हो तो उस सत्संग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। टीवियों से सत्संग करते हैं आजकल के, टीवी आवे सत्संग करे। वैराग्यवान के बिना सत्संग लाभ नहीं करता। यदि कोई वैराग्यवान पुरुष न मिले तो शास्त्र को पढ़ो। शास्त्र का संग भी सत्संग है, जैसे अपन पढ़ रहे हैं वैसा। श्रेष्ठ पुरुष होते हैं अधिकांश में गुप्त रहते हैं। आपको एक बात बताते हैं, जाति से ब्राह्मण है, आश्रम से साधु है, शास्त्रों का विद्वान है, किंतु वैराग्य नहीं है तो सब झूठा है। परमात्मा की प्राप्ति वाला पुरुष विरक्त आदमियों में ही मिलेगा। जहां भोग एश आराम है वहां परमात्मा नहीं मिलेगा। जहां आराम है वहां राम नहीं है। अच्छे अच्छे साधुओं में भी लाखों में से कोई एक पुरुष वैराग्यवान प्रभु के तत्व को जानने वाला मिलता है। शेष तक जिसके वैराग्य उपरांता रहे वही महात्मा ज्ञानी प्रभु की प्राप्ति वाला हो सकता है। जहां वैराग्य है वहां बड़ा आनंद है। वैराग्य के पास में आराम ठहर नहीं सकता। वैराग्य और उपरांता होने के बाद अपने शरीर का आराम तो भाग ही जाता है। उसको शरीर का आराम सुहाएगा ही नहीं। उसके मन में तो यही रहेगी कि अपना समय भजन साधन में बीतना चाहिए। आजकल जो बाहर का वैराग्य दिखता है वो तो एक नकल है, भीतर का वैराग्य होना चाहिए, असली वैराग्य वो है। बाहर भी हो और भीतर भी हो, वो वैराग्य काम करने वाला होता है। जहां भोग आराम पाप प्रमाद, वहां परमात्मा की प्राप्ति का नामो निशान भी नहीं है। हरेक को अपना समय वैराग्य में बिताना चाहिए। वैराग्य युक्त आदमी का संग करना चाहिए। कभी भी विषयासक्त पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। विषयों में जो आसक्त है, चाहे वो किसी भी वेश में हो, उसको प्लेग के समान बीमारी समझना चाहिए। प्लेग की बीमारी होती है छुआछूत। आराम शब्द का टुकड़ा करो, आ राम अथवा राम आ, ऐसा करने से कल्याण हो सकता है। अच्छे अच्छे विद्वानों की, पंडितों की, महात्माओं की सेवा करने की तो इच्छा रहती है, परंतु जब देखा कि इनमें वैराग्य नहीं है तो श्रद्धा गायब हो जाती है। फिर वह ऊपर ऊपर का ही सत्कार होता है। इसलिए अच्छे अच्छे महात्माओं के चरित्र को पढ़ने से वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। ऋषभदेव जी बड़े विरक्त थे, वन में जा रहे हैं, चारों ओर वन में भयंकर आग जल रही है, किंतु उनको कुछ पता ही नहीं, उनका शरीर जलने लग गया। पता क्यों नहीं? उनके अंदर तो वैराग्य की आग भटक रही है। वो जंगल की आग क्यों देखेंगे? जड़ भरत जी महाराज खेत में बैठे ध्यान में मस्त थे। लोग तो उनको देखकर समझते थे कि ये महामूर्ख है, किंतु वे बड़े वैराग्यवान थे। जड़ भरत के बड़े भाई खेती कराया करते थे। उनके भाइयों ने कहा, ए जड़ भरत, किसी पशु को खेत में मत आने देना, उन्होंने सुन लिया, बोलना कुछ था नहीं, खेत के पास रास्ते पर खड़े हो गए। गायों का झुंड आया तो अपने खेत की तरफ उनको भेज दिया। खेत में गाय ही गाय हो गई, गाय खूब खेत चर रही है। उसके भाई ने कहा, ये क्या करते हो? जड़ भरत जी ने बोला, आप ही ने तो कहा था गायों को घेरना। अरे घेरने का अर्थ ये थोड़ा ही था, अपने खेत में नहीं, अरे पास पड़ोस के दूसरे खेत में घेरने के लिए कहा था, अपना खेत थोड़े ही नष्ट करने के लिए कहा था। जड़ भरत जी ने कहा, भाई साहब अपने खेत के रहते हुए दूसरों में क्यों गायों को भेजें? ऐसा क्यों करते हो? भाई ने सिर पटक के कहा कि अरे मूर्ख, अब तेरे को क्या कहूं, तू मानने वाला नहीं है। चल कोई बात नहीं, खड्डा है खेत में, माटी गेर देना, जड़ भरत जी जहां खड़े थे, जहां खड्डा था वहां मिट्टी गिरते 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 बहुत ऊंचा कर दिया, ऊंची जमीन हो गई। और जहां बराबर जमीन थी वहां से माटी खोते खोते वहां एक नया खड्डा कर दिया। वो कहे जानबूझकर नहीं करते थे, वो काम सुधरे चाहे बिगड़े, वो महात्मा तो ध्यान में मस्त रहता था, बड़ी उपरांता रहती थी। जनक जी को ले, जनक तो थे गृहस्थी परंतु संसार के विषयों से उनके मन में कितना वैराग्य था। एक बार एक राजा आया, जनक जी से बोला, हे जनक महाराज, मैं आपके पास उपदेश के लिए आया हूं, मैं जिज्ञासु हूं, आप इतना बड़ा राज्य करते हो, इतनी धन दौलत के साथ रहते हो, बहुत सी स्त्रियों के बीच में रहते हो, कुशलतापूर्वक व्यवहार करते हो, तो भी आप हर वक्त ब्रह्म में कैसे स्थित रह जाते हो, इसका क्या रहस्य है? आपका सारा काम न्याय युक्त कैसे होता है? आप अपने पवित्र आचरणों से कैसे शिक्षा देते हैं? प्रजा का काम करते हुए भी आपकी परमेश्वर में अटल स्थिति कैसे रहती है? जनक जी ने कहा, ठीक है सुन लिया, जाओ स्नान करो, भोजन करो। बहुत अच्छी जगह उनको स्नान कराने के लिए भेजा, खूब अच्छी बढ़िया जगह, छोटी तलैया, स्वच्छ जल, खूब नहाए शौकीनी के साथ। फिर भोजन करने बैठे, बहुत ही अच्छा भोजन कराया। और जब भोजन के लिए बैठाया तो जहां बैठाया था वहां उनके सिर के ऊपर एक कच्चे सूत में तलवार बांध दी और कहा, ये बैठने की जगह भोजन करो, खूब अच्छा भोजन पुरसा हुआ है, ये भोजन करो। उसने कहा ऊपर देखकर, क्या राजन यही बैठने की जगह? साहब हम तो यही बैठ करके भोजन कराते हैं, तो और जगह नहीं है, यहां तलवार लटक रही है, ये तो भोजन करने की जगह है, आप ऊपर क्यों देखते हो? नीचे देखो ना, थाल में कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। अब वो एक एक ग्रास लेवे, भोजन की तरफ देखे नहीं, तलवार की तरफ देखे, सूत में क्या पता कब गिर जाए। ऐसे तलवार पर दृष्टि है, बड़ी मुश्किल से भोजन किया। जनक जी ने पूछा, क्यों राजन, भोजन कर लिया है ना, भोजन का स्वाद कैसा आया, खूब अच्छा भोजन था ना, कितना बढ़िया घेवर और कितने बढ़िए पुड़िया, पुड़ियों में कैसा बढ़िया बेसन और उसमें भी मिठास और ऐसा ही साग, ऐसे ही खीर, कैसा स्वाद आया आपको। उसने कहा, जनक जी महाराज, मेरे को तो कोई स्वाद नहीं आया, मैं तो पेट भराई कर रहा था, मुझे यही पता नहीं था कि मैं क्या खा रहा हूं। थाली में हाथ मारता था, जो आ जाए वो खा लेता था, लेकिन मेरी दृष्टि तलवार पर रहती थी। अब आप ही बताओ, तलवार को ऊपर लटका करके आप भोजन कराते हो और फिर हमसे पूछते हो कैसा स्वाद आया। जनक जी ने कहा, मैंने तो आपके प्रश्न का उत्तर दिया है, मुझे कोई आपको मारना थोड़ा ही था, मेरे आपके सारे प्रश्नों का उत्तर हो गया ना, मेरे प्रश्नों का उत्तर समझे नहीं क्या, मैं तो कुछ नहीं समझा। देखो, निरंतर परमात्मा की ओर ध्यान लगाने वाला संसार के भोगों से ऊपर उठा हुआ होता है। तुम्हारी दृष्टि कहां थी, भोजन पर नीचे नहीं थी ना, ऐसे ही भोगों पर दृष्टि नहीं रहती, भगवान पर दृष्टि रहती है, उसको ये भोग आकर्षित नहीं कर सकते। एक दिन की बात है, राजा जनक जी के यहां बड़े भारी विरक्त पुरुष आए। शीतकाल था, रात्रि हो गई। उन्होंने कहा, महाराज जनक जी हैं, हम बहुत दूर से विरक्त संतों की मंडली आई है, मिलना चाहती है। राजा ने कहा, ठीक है, भेज दो। पहरेदारों ने कहा कि महाराज, कहा सभा भवन में, नहीं नहीं हमारे विश्राम कक्ष में भेजो। पहरेदारों ने कहा, महाराज जहां सबके साथ मिलते हैं वहां बैठे तो हमारी आज्ञा का पालन होना चाहिए। विरक्त पुरुषों की टोली आई, जिस कक्ष में महाराज आराम करते थे उसी कक्ष में उनकी स्त्री उनके साथ बराबर में बैठी हुई थी, और उन्होंने अपना एक हाथ स्त्री पर रख दिया। विरक्त पुरुषों ने कहा, महाराज हमने आपकी बड़ी महिमा सुनी थी, लेकिन इस प्रकार से तो कोई छोटी बुद्धि का पुरुष भी औरों के सामने अपनी स्त्री पर ऐसे हाथ रख करके नहीं बैठते हैं, आप तो परम वैराग्यवान सुने जाते हैं, कहे जाते हैं। जनक जी ने कहा, आप यहीं बैठिए, और उन्होंने आदेश दिया कि जलती हुई अंगारों की अंगूठी अंगीठी लेकर आओ, वो वहां रख दी पास में, एक हाथ स्त्री पर है और एक हाथ अंगीठी पर है। यह दृश्य देखते ही विरक्त मंडली लौटने लगी। जनक जी ने पूछा, क्यों महात्मा जी इस रात में तो आप आए, बिना बात के आप कहां जा रहे हैं? आप कहां जा रहे हैं, क्यों आए थे? उन्होंने कहा, हमने आपका बहुत बड़ा नाम सुना था, आपका वैराग्य हमको खींच करके लाया, तो मैंने हम धोखे में रह गए। हम लोगों के सामने भी आप अपना हाथ स्त्री पर रखकर बैठे हैं, हमारे मन में बहुत ग्लानी हुई आपसे, लेकिन जब आपने दूसरे हाथ को अग्नि में रखा तो हमें लगा कि आप दोनों अवस्थाओं में सम हैं, न आपको स्त्री आकर्षित कर सकती है और न ही अग्नि आपको भयभीत कर सकती है। एक सन्यासी जैसे वैराग्य पूर्वक संसार में रहता है, ऐसे आपका ये वैराग्य हमारे समझ में आया है। आपके अंदर का वैराग्य आपको सारे संसार में चमका रहा है। हम लोगों को शिक्षा मिलती है कि न सुख की तरफ विचार करना चाहिए, न दुख की तरफ विचार करना चाहिए, उपरांता की बड़ी आवश्यकता है। वैराग्य युक्त जो पुरुष होते हैं वे उपरांता को बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं। जिसमें उपरांता वैराग्य होता है उसका बड़ा असर पड़ता है। उपरांता वैराग्य तो अमृत है, इस अमृत का पान करते समय मनुष्य यदि उस रस से छुड़ाना चाहे तो क्या वह उस अमृत को छोड़ सकता है? कोई अमृत पीते छोड़ दे? छोड़ नहीं सकता। बछड़ा जैसे गाय को चुंगता है और बीच में उसको कोई खींचे तो बछड़ा कूदने लगता है, भाग वो वापस गाय की तरफ भागने लगता है। ऐसे ही जिसके अंदर वैराग्य का अमृत है उसके सामने भोग पदार्थ आवे वो उनसे भागना चाहता है। वैराग्य का परिणाम उपरांता है, उपरांता से प्रेम होता है, इससे कल्याण होता है। संसार से जो वृत्तियों का हटना है यही उपरांता है। इसलिए हमको जिस किसी प्रकार से अपने साधन को खूब तेज बनाना चाहिए। जैसे लोभी आदमी होता है कि धन और हो जाए और हो जाए और हो जाए, उसको कितना ही धन मिले संतोष होता ही नहीं। इसी प्रकार हमें साधन के बढ़ने में संतोष नहीं करना चाहिए। संसार के विषयों से जो संयम है वह साधन में बहुत मददकारक है। दुखी और अनाथ की सेवा करनी चाहिए, सबका सुहृद बनना चाहिए, मनुष्य को तन मन धन जन सबसे सबकी खूब सेवा करनी चाहिए और मन में ये समझना चाहिए कि मैं तो निमित्त मात्र हूं, मेरे से तो भगवान करवा रहे हैं। कुसंग से बचो, हर वक्त साधन में तत्पर रहने से कुसंग से बच जाओगे। भगवान की वृत्ति, भगवान का ध्यान बहुत ऊंचा साधन है। ये जो दंभी पुरुष होते हैं ऊपर से और अंदर से और, उनसे बचो, हाथ जोड़ दो। छोटी छोटी चीजों के सामने फिसल जाते हो, कितनी कमजोरी है। वैराग्य होना बड़ा आवश्यक है, धैर्य धारण करना चाहिए, साधन निरंतर करते रहना चाहिए। वैराग्यवान पुरुष सभी परिस्थिति में सदा प्रसन्न रहता है, उसके क्लेशों का नाम निशान भी नहीं रहता। वह पुरुष संसार के लिए आदर्श हो जाता है, उसकी सारी क्रियाएं प्रयोजन वाली होती हैं, उसके आचरण से मनुष्य शिक्षा ले सकता है, इसलिए उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करना चाहिए। सब प्रकार से मनुष्य को प्रभु के लिए अपने आप को अर्पण कर देना चाहिए, सब जगह प्रभु को देखना चाहिए। जैसे मनुष्य हरे रंग का चश्मा लगा लेता है, उसको सारा संसार हरा ही हरा दिखता है, ऐसे ही यहां हरि का चश्मा लगाना चाहिए और सब जगह हरी ही हरी, हरी हरी दिखना चाहिए। मैं तो हरा हरा, यहां हरी हरी। अपनी सारी क्रिया प्रयोजन वाली होनी चाहिए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, एकांत में एकाग्रचित्त होकर साधन करना चाहिए, अच्छे अच्छे गुणों को ग्रहण करो, दोषों को छोड़ देना चाहिए। नारायण नारायण नारायण।